आज हम सभी का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है जो हमारे बीच बहुत ही धारणामूर्त, विनम्र और अपने शांत चित्त बोल से लाभान्वित करने वाले एक विशेष वक्ता आदरणीय डॉक्टर सविता बहन उपस्थित हैं। हम सभी उनका करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। आदरणीय सविता बहन, आप 1975 में बचपन से ही बाबा के ज्ञान के संपर्क में आए। 1989 में आपने अपना संपूर्ण जीवन इस यज्ञ में समर्पित किया। आपने अपनी लौकिक पढ़ाई MBBS डिग्री राजस्थान यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया है। उसके बाद आप ग्लोबल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर माउंट आबू में मेडिकल ऑफिसर के रूप में सन 2000 में ज्वाइन भी हुए। आप इस संस्था के पूर्व प्रधान संचालिका, आदरणीय, हम सभी के अति प्यारी और मीठी मीठी दादी प्रकाशमणि जी के फैमिली फिजिशियन भी हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज के राजयोगा एजुकेशन और रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत जो महिला प्रभाग है, आप उसके हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपने विश्व के कई देश और विदेश जैसे यूके, यूएसए और यूएई जैसे अनेक कंट्रीज में अपने हेल्दी लाइफस्टाइल और राजयोगा मेडिटेशन द्वारा अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित भी किया है। तो आप ब्रह्मा कुमारीज अकादमी के एक फैकल्टी मेंबर भी रह चुके हैं। तो अभी हम सुनेंगे आदरणीय डॉक्टर सविता बहन से। विषय है ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ स्थिति, संतुष्टता और पवित्रता। ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ स्थिति, संतुष्टता और पवित्रता, आदरणीय डॉक्टर सविता बहन।
ओम शांति। बाबा हम बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, तो देवता बनना माना ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। तो सर्वगुण में जो सबसे विशेष गुण है आध्यात्मिक मार्ग पर, अगर हम विशेष कहें तो, जो भी आध्यात्म जगत में विशेष पुरुषार्थ करने वाले रहे हैं, उनका ये गुण रहा है संतुष्टता। संतुष्टता माना हर हाल में राजी। जैसे बाबा हमें कई बार कहते हैं, जो खिलाएं, जैसे बिठाएं, जैसे चलाएं, हर बात में राजी हैं। यानी मन चैन में रहता है, मन बेचैन नहीं होता है। असंतुष्ट होने का मतलब मन अशांत हो जाता है। अगर मुझे कोई अप्राप्ति है तो मन दुखी हो जाता है, मन बेचैन हो जाता है। बाबा ने कहा संतुष्टता का आधार ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति है। दुनिया में जो आध्यात्मिक जगत में या भक्त गण हुए हैं, उन्होंने संतुष्टता को थोड़ा अलग तरह से परिभाषित किया। उन्होंने कहा, जैसे कबीर दास जी ने कहा, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। तो जिसको संतोष है यानी जो त्यागी है, उसके लिए ये सब धन बेकार है। कहने का भाव ये है, जो भी धन संपत्ति की बात है, इसमें सब आ जाता है, गो धन गज धन बाजी धन और रतन। कितने भी रतन हैं, मूल्यवान गहने हैं, गोधन है, गज धन है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं यहां संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्ति। पाना था सो पा लिया, या कहते हैं कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, ये बाबा हमें कहते हैं। तो ये सही है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, या सिर्फ कहने के लिए ही है? क्या कहेंगे? ज्ञान के आधार पर समझा है या हम अनुभव करते हैं इस बात को? तो बाबा ने कहा कि जो प्राप्तियां हैं वो बेहद की हैं। जब स्वयं भाग्य विधाता भगवान ही हमारा हो गया तो फिर सर्व भाग्य हमारे हो गए, सर्व प्राप्तियां हमारी हो गई। जैसे दुनिया में चार तरह के भाग्य माने जाते हैं, तन मन धन और संबंध। तन के लिए कहते हैं स्वस्थ सुंदर काया हो तो प्राप्ति है, मन के लिए कहेंगे सदा प्रसन्न चित रहे, मन सदा प्रसन्न रहे, मौज में रहे, शांत रहे। धन इतना अवश्य हो कि सारी आवश्यकताएं सहज पूरी होती रहें, उससे भी अधिक थोड़ा और धन हो मानो, संपत्ति ऐसी हो। और संबंध का भाग्य मानते हैं कि सर्व संबंध निस्वार्थ स्नेह और सहयोग देने वाले हों। तो ये चारों भाग्य ब्राह्मण जीवन में भी मिले हैं और आने वाले 21 जन्म, बाबा कहता है जन्म जन्मांतर तक ये भाग्य हमारे साथ हैं, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने ये भाग्य हमें दिया है। तो ये स्थूल प्राप्तियां हैं और उसके साथ साथ सूक्ष्म प्राप्ति की भी बात करता है बाबा। जैसे दुनिया में भी हर इंसान चाहता है उसका मान होना चाहिए, उसका थोड़ा नाम भी होना चाहिए, शान हो, नाम मान शान जिसे कहते हैं। तो ये भी नाम मान शान की प्राप्ति भी ब्राह्मण जीवन में है, लेकिन बाबा ने ये सभी हमें ज्ञान के आधार पर दिया है, क्योंकि ज्ञान धन सबसे बड़ा धन है। ज्ञान हमें त्रिकालदर्शी बनाता है, ज्ञान हमें त्रिनेत्री बनाता है, ज्ञान ही हमें सारे राज समझाता है, ऐसे ही कहेंगे। और कहते हैं जो सारे राज जानते हैं वो कभी नाराज नहीं होते। असंतुष्ट हम कब नहीं होंगे? जब हम ज्ञान के इन सब राजों को जानते हैं, समझते हैं। वो बेहद की प्राप्ति का हमें अनुभव है। तो फिर ये हद की दुनिया की जो छोटी छोटी प्राप्तियां हैं, क्योंकि मन बुद्धि ज्यादा समय उनमें ही उलझी रहती है, बेहद की प्राप्तियां तो हम सोच ही नहीं पाते हैं। तो फिर ये हद की प्राप्तियां उसके आगे हमें बहुत छोटी लगेंगी, और मन सदा भरपूर रहेगा, मन सदा संतुष्ट रहेगा। बाबा कहता है ये सब प्राप्तियां सभी को हैं, एक ही द्वारा, एक ही जैसी और एक ही समय पर बाबा के सब बच्चों को दिया है। बाबा का खजाना अखुट है, ऐसे नहीं कि एक को थोड़ा दिया दूसरे को थोड़ा दिया। जैसे माँ बाप बांटते ना अपनी संपत्ति, तो सबको एक जैसी तो नहीं दे सकते हैं, तो फिर सब जितने बच्चे होंगे उसमें डिवाइड करेंगे। लेकिन बाबा को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो सभी को एक जैसा मिला है, लेकिन फिर भी बाबा कहता है नंबरवार है। उसको प्राप्त करने में, अनुभव करने में नंबरवार बन जाते हैं, क्योंकि हम कितना उसे अपने अनुभव में लाते हैं उस पर निर्भर करता है। और बाबा कहता है कि ये प्राप्तियां आप ही नहीं जो आपकी प्रजा होने वाली है या जो आपके भक्त होने वाले हैं। हरेक ब्राह्मण आत्मा पूज्य आत्मा है, तो हरेक के भक्त भी होने वाले हैं। तो केवल वो भक्त ही नहीं खाएंगे, लेकिन वो भक्तों की वंशावली भी, ऐसा एक मुरली में बाबा ने कहा था, वो भी उन प्राप्तियों के आधार से चलते रहेंगे। तो फिर अगर वो प्राप्तियों की स्मृति है तो कितनी खुशी, कितना नशा हमें अनुभव होना चाहिए। लेकिन स्मृति स्वरूप होंगे तब, अगर विस्मृति हो गई तो फिर पुरानी दुनिया की प्राप्तियों में ही मन बुद्धि जाएगी। तो जैसे बताया कि तन की प्राप्ति, बाबा कहते हैं तन की प्राप्ति मतलब स्वस्थ तन होना चाहिए। तो संगम युग में तो हम सबका तन स्वस्थ तो नहीं है, तन का तो हमें हिसाब किताब चुकतू करना है, और सारे जो भी पुराने जन्म हैं उसके भी हिसाब किताब चुकतू करने हैं। फिर दूसरी बात बाबा कहता है कि ये प्रकृति है ना, प्रकृति तमो प्रधान तत्वों से बनी हुई है, उसका भी असर है इसके ऊपर। लेकिन जो बाबा ने हमें आत्मज्ञान दिया है उसके आधार पर आत्मा स्वस्थ है। तो जब मन स्वस्थ है, आत्मा स्वस्थ है, तो फिर तन का हिसाब किताब कितना भी कड़ा क्यों ना हो, वो हमें सूली से कांटे के समान अनुभव होता है। इसको कहते हैं मन स्वस्थ है तो तन भी स्वस्थ होने लगता है। फिर बाबा ने ये भी हमें समझाया है कि भले हम सभी के शरीर या जो भी प्रकृति है वो ऊपर नीचे होती है, लेकिन अगर हम बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं, कई बार ऐसे होता है यदि हम सोल कॉन्शियस नहीं हैं, आत्मा के ज्ञान को भूल जाते हैं, पूरी तरह से बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं या बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं, मानो कहीं दर्द हो रहा है तो सारे समय मेरे मन में क्या आ रहा है, मेरे घुटने में दर्द है, मेरे कमर में दर्द, आजकल की जो कॉमन बीमारियां हैं, सिर में दर्द है मानो। और फिर न सिर्फ हम मन में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, लेकिन दूसरों से भी वर्णन करते हैं। कितनी ही बार हम वो वर्णन करते हैं ऐसा है वैसा है, तो हम उस बीमारी को ठीक करने की बजाय बीमारी को बढ़ा रहे हैं, अपने कर्म भोग के हिसाब किताब को हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन यदि बीमारी आई, हम अशरीरी स्थिति का अनुभव करते हैं, बाबा की याद से हम कर्म भोग को कर्म योग में बदल कर चुकतू कर लेते हैं। एक बात और बाबा ने कही, जो आजकल बहुत सारी पैथियां निकली हैं, है ना, ये सब कलयुग की इन्वेंशन है, इसके पहले तो इतनी पैथियां नहीं होती थी, इतनी दवाइयां, इतने सब चिकित्सा के साधन हैं, आज मेडिकल साइंस कितना एडवांस हो चुका है, तो किस लिए? पता है कि कर्म भोग आने वाले हैं और उनको चुकतू करने के लिए जो सहयोग चाहिए वो ये सारे इन्वेंशन है। तो जो पैथी हमको सूट करती है, बाबा कहता है मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, मैं आपका इलाज नहीं करूंगा। दुनिया में तो लोग जाते हैं किसी साधु संत के पास, उसने कुछ दिया, सिद्धि दिखाई, आप ठीक हो जाएंगे, है ना। बाबा ना तो वो सिद्धियां और ना ही कोई दवाई, डॉक्टर के पास जाएं, और जो डॉक्टर दवाई देते हैं बाबा कहता है उसको मजबूरी से नहीं खाओ लेकिन प्यार से खा लो। वो दवाइयां ही इस कलयुग के शक्तिशाली फ्रूट हैं। जैसे फ्रूट रंग बिरंगे होते हैं, ऐसे दवाइयां भी रंग बिरंगी होती हैं। कैसे खाना है उस भाव का भी फर्क पड़ता है। तो अगर हमने बाबा की याद में उसको ये मुझे ठीक करने वाली दवाई है, मजबूरी से नहीं प्यार से खा लिया, तो बीमारी ठीक होने की गति हमारी बढ़ जाएगी, उस कर्म भोग से हम जल्दी मुक्त हो जाएंगे। और अगर मन स्वस्थ है तो तन का दुख महसूस होता ही नहीं है, ये हमने भी कई बार अनुभव किया है। एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरे सिर में गहरी चोट थी उस समय, हो सकता है कि बहुत दर्द हो सकता था मुझे, लेकिन और मैं थोड़ा समय के लिए बेहोश भी हुई थी उस समय, लेकिन जब मुझे होश आया तो क्योंकि मैं बाबा की याद में थी, अब कोई ना कोई जो भी हमारे कर्म भोग होते हैं, हिसाब किताब होते हैं, हम सबके सामने आते ही हैं, हमें यहाँ ही चुप्पू करना है, तो जो भी था वो सामने आया। लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि क्योंकि मैं सोल कॉन्शियस थी, तो ना तो मुझे जब एक्सीडेंट हुआ उस समय दर्द हुआ, और जब मैं होश में आई तभी भी मुझे कोई दर्द की महसूसता नहीं थी, और जितना समय मैं अस्पताल में थी कभी भी मुझे दर्द जरा भी महसूस नहीं हुआ। तो जैसे ऐसे लगा कि जैसे बाबा ने अपनी गोद में ले रखा है। तो बाबा हमें इतना अच्छा अनुभव कराता है कि हम कैसे उस सहज परिस्थितियों से पार हो जाते हैं। तो तन के हिसाब किताब कई बार हमको असंतुष्ट करते हैं, ये असंतुष्ट करेंगे, अरे बीमारी हो गई अब कौन सेवा करेगा, या हम बाबा की सेवा में कैसे सहयोगी बनेंगे, थोड़ा दिल शिकस्त होने लगते हैं, अरे शरीर ही नहीं चलता है, अब क्या करें, कैसे पुरुषार्थ करें, मैं तो सवेरे उठ ही नहीं पाती हूँ, मैं शरीर इतना कमजोर है, थका थका रहता है। मैं एक बात बता रही हूँ किस तरह से हम मन में व्यर्थ संकल्प चलाते हैं अपने शरीर को लेकर के और असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन तन किसका है, मेरा है या बाबा का है, कहा ना तन मन धन सब कुछ तेरा। तो बाबा ने मुझे ये तन सेवा के लिए दिया है, अगर कोई भी तन की बात मुझे परेशान कर रही है तो मुझे किसको दे देना है, बाबा ये आपका तन है, आपको कैसे चलाना है आप जानो, और हम निश्चिंत हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, फिर देखो बाबा कैसे आपके तन को चलाता है। तो कभी भी अपने तन के हिसाब किताब को लेकर के भी हमें असंतुष्ट नहीं होना है, लेकिन आत्मा को मन को स्वस्थ रखना है। कई बार बाबा कहते हैं अगर आप खुश हैं और अगर ये शरीर चला भी जाए, खुशी खुशी अगर ये शरीर चला जाएगा तो क्या करेंगे, आगे जन्म में भी जाकर सेवा करेंगे, एडवांस पार्टी में जाएंगे और बहुत अच्छे घर में जन्म मिलेगा, क्योंकि कर्म बंधन में शरीर नहीं छोड़ा, कर्म संबंध में शरीर छोड़ा। लेकिन अगर दुखी होकर के शरीर छोड़ेंगे तो फिर वो आत्मा हिसाब किताब ले जाएगी, तो फिर ऐसा ही शरीर मिलेगा। इसीलिए कहते हैं ना अंत मते सो गते। फिर मन की बात जहां तक आती है तो बाबा ने हमें सदा सुखी बना दिया है, हम ईश्वरीय सुख अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, और कहते भी हैं सिमर सिमर सुख पाओ, जितना बाबा की याद में रहते हैं, जितना बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं उतना मन सुखी रहता है, मन शांत भी रहता है। लेकिन मन हलचल में कब आता है, जब परिस्थितियां आती हैं। परिस्थितियां आती हैं तो हम प्रश्नों में चले जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या मेरे से ही ऐसा क्यों होता है, मेरे ही इतने हिसाब किताब कड़े क्यों हैं, या मेरा ही ऐसा कर्म बंधन भगवान ने क्यों बनाया, क्या करते हैं सबको दोष देना शुरू कर दे, असंतुष्ट माना, परिस्थिति में असंतुष्ट माना, सबको दोष देना शुरू कर देते हैं अपने अलावा, कि भगवान को भी दोष देना शुरू कर देते हैं, भाग्य विधाता ने ड्रामा में मेरा ऐसा पार्ट बना दिया, अपने पार्ट से ही हम असंतुष्ट हो जाते हैं, पार्ट से असंतुष्ट। तो बाबा ने हमेशा हमें कहा है प्रश्न चित्त नहीं बनना है। इन सब प्रश्नों का उत्तर बाबा क्या देते हैं, जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि संगम युग कल्याणकारी है। किसी भी बात में चाहे अकल्याण दिखाई देने वाली बात हो तो भी हमारा उसमें कल्याण ही है। तो किसी भी परिस्थिति को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के देखना है, ये बाबा ने हमें समझ दिया। क्योंकि अब हम तीनों कालों को जानते हैं, क्यों हो रहा है ये राज बाबा ने हमें समझाया है। मेरा कोई हिसाब किताब है जो चुकतू हो रहा है, या जिस आत्मा से हो रहा है उसके साथ भी मेरा कोई पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। किसी का कर्ज चुकतू होता है तो वो खुश होता है या दुखी होता है? तो मेरे जन्म जन्मांतर के कर्ज चुकतू हो रहे हैं, उसे याद करना है। जो बाबा ने स्मृति दिलाई है, अगर वो ज्ञान हमारी स्मृति में आता है तो हम किसी भी परिस्थिति में असंतुष्ट नहीं हो सकते। फिर तीसरी बात धन की आती है। जब जहां धन की बात आती है तो लोग धन संपत्ति को आज बहुत महत्व देते हैं, कहते हैं जमाना ही इसका है, धन शक्ति है। आज जो व्यक्ति धनवान होता है, संपत्तिवान होता है, समाज भी उसको मान्यता देता है। तो भाग दौड़ किसकी लगी हुई है आज दुनिया में? इसी बात की है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा धन जमा कर लें, कैसे ज्यादा से ज्यादा हम साधन जमा कर लें। हाँ, लेकिन हमारा धन कौन सा है? हमारी भागदौड़ इस धन की है या दूसरे धन की है? क्या कहेंगे? भाइयों का संबंध धन कमाने से ज्यादा होता है ना, क्या कहेंगे? कौन सी भागदौड़ है? हाँ, कि वो धन नहीं आया तो असंतुष्ट हो गए, ज्यादा से ज्यादा धन चाहिए। कौन सा धन चाहिए? ज्ञान का धन चाहिए। तो बाबा ने हमें अविनाशी धन, अविनाशी खजाने दिए हैं, और सबसे बड़ा अविनाशी धन तो ज्ञान धन है, जो बाबा कहता है एक एक रतन लाखों रुपए का है। और इस विनाशी धन के बारे में हमें क्या बाबा ने ज्ञान दिया? सारी पुरानी दुनिया ही जाने वाली है, सब कुछ खत्म होने वाला है। किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, बाबा ने समझा दिया है ना। तो ये जाने वाला नहीं है, ये तो यहीं रह जाएगा। कितना जमा कर लेंगे, कोई साथ में ले जाएगा? कोई अपना बैंक बैलेंस ले जाएगा या कोई अपने मकान ले जाएगा? ये नहीं जाने वाला है साथ में। लेकिन जो अविनाशी कमाई की आज, वो आज भी सुख देने वाली है और आने वाले जन्म जन्मांतर तक वो भाग्य हमें मिलेगा। तो इस अविनाशी कमाई को सदा याद रखना है। तो बाबा कहता है दो तरह की भरपूर आत्माएं होती हैं। एक होते मन से भरपूर। अगर हम मन से भरपूर हैं, हमें पता है हम सर्व प्राप्ति संपन्न हैं, तो फिर कोई इस दुनिया की छोटी मोटी चीजें मुझे नहीं भी हैं मानो। अब वही होता है ना, क्या चाहिए? घर में जो भी विज्ञान ने सुख सुविधा के साधन दिए हैं वो सब, कार चाहिए, मोबाइल चाहिए, या फिर मकान चाहिए, और भी चीजें जो भी हैं, अगर वो नहीं भी हैं तो भी हम खुश हैं। संतुष्ट होने का मतलब हम प्रसन्न हैं, हम खुश रह सकते हैं। लेकिन जो मन से भरपूर नहीं है, उसको कितना भी प्राप्त हो जाए, भले ही वो करोड़पति भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी क्या होगा? इच्छाएं होंगी। ये भी कम है, 1 करोड़ से 2 करोड़ कैसे हो जाए, 2 से 4 कैसे हो जाए, किसमें लगे रहेंगे? बाबा कहता है वो एक इच्छा पूरी होगी वो 10 इच्छाओं को जन्म देगी। ये इच्छाएं ऐसी हैं। इच्छाओं के पीछे भागना कैसा है? परछाई के पीछे जाना। परछाई कभी पकड़ में आती है? आती है कभी पकड़ में। लेकिन परछाई को अगर अपने वश करना है तो रोशनी की तरफ मुंह कर दो, तो परछाई पीछे पीछे आने लगेगी। तो यहां भी बाबा कहता है सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। श्री बाबा ज्ञान सूर्य है, उसकी याद में रहेंगे तो ये जो सांसारिक इच्छाएं हैं अपने आप पूरी होंगी, सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो अपने बच्चों की आवश्यकताएं बाबा सहज पूरी करते हैं। फिर कई लोग सोचते हैं चलो अपने लिए ना सही, हम तो सेवा के लिए सोचते हैं, हाँ सेवा के लिए तो धन होना चाहिए। हाँ तो जितना ज्यादा धन होगा हम सेवा में उतने ही ज्यादा सहयोगी बनेंगे। लेकिन बाबा को कौन सा धन चाहिए? हाँ कई सोचते हैं बाबा लॉटरी का टिकट ले लेते हैं, लॉटरी खुल जाएगी तो सेवा में लगा देंगे। हाँ, और लॉटरी का धन सेवा में लगेगा? तो बाबा कहता है सच्चे दिल पर साहब राजी, जो हमने सच्चाई से धन कमाया है वो बाबा की सेवा में लगता है, उसमें हमारा स्वार्थ भी नहीं होना चाहिए। कई बार सेवा में भी स्वार्थ होता है, हम धन सफल कर रहे हैं ना, जैसे भक्ति में भी स्वार्थ होता है। अगर कोई दान करेगा ना किसी भी देवता के प्रति तो कुछ ना कुछ स्वार्थ के कारण करेगा, उसकी कोई मनोकामना होती है। तो अगर हम भी बाबा की सेवा में कर रहे हैं लेकिन स्वार्थ है, चलो स्थूल स्वार्थ नहीं लेकिन नाम मान शान का भी स्वार्थ हो सकता है। देखो इसने इतना धन दिया तो नाम होगा ना, मान इज्जत मिलेगी, बहन ज्यादा पूछेगी, थोड़ा ज्यादा ध्यान देगी, या जो भी थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ाएगी, कई बातें होती हैं इसके अंदर। तो अगर हमने इस भावना से भी उस धन को धन के लिए सोचा तो बाबा कहता है फिर बाबा न तो वो जमा होगा और ना ही बाबा सहयोगी बनेगा। लेकिन अगर सेवा की सच्ची दिल है तो फिर कहीं ना कहीं से धन आपके पास आ जाएगा। अगर निस्वार्थ भाव से सेवा की सच्ची दिल है और आप सेवा में भी उसे लगा सकेंगे और वो एक एक लाख के बराबर होगा। अगर आपने स्वार्थ भाव से किया, आपने एक लाख भी किया, वो एक रुपए के बराबर होगा। लेकिन अगर सच्चे दिल से किया तो उसकी कीमत कितनी है? तो बाबा भाव को देखता है, क्या कर रहे हैं आप, कितना कर रहे हैं उसको नहीं देखता है। मेरे को याद है एक बार मैं शुरू में जब सेंटर पर सेवा में रहने के लिए आई थी तो मैं जिस सेंटर पर रह रही थी वो बहुत छोटा सेंटर था, ज्यादा भाई बहने भी नहीं थे वहां पर, एक गांव मतलब कस्बा था वो। और वहां रैली आने वाली थी, एक यूथ रैली आने वाली थी, और एक बहन और थी जो पहले से थी उस सेवा केंद्र पर और मैं भी रह रही थी। मैंने मेडिकल पास किया था, मेरी वहां पोस्टिंग हुई थी तो हॉस्पिटल में काम करने के हिसाब से, और क्योंकि मेरा समर्पित जीवन का लक्ष्य था तो मैं सेंटर पर ही रहने लगी वहां बहन के पास। तो स्थिति पता थी सेंटर की कि हाँ इतना सक्षम नहीं है सेवा केंद्र की, एक रैली आए यहाँ, रैली के भाई बहने यहाँ रहें और हम इतने सेवा के प्रोग्राम कर पाए। तो थोड़ा सा ये विचार चल रहा था हम दोनों में कि कैसे होगा ये सब। और ऐसे ही भाई बहनों की एक मीटिंग की और उसमें किसी ने कहा कि हमारे उनके कनेक्शन के होते ना कोई संपर्क वाली आत्माएं होती हैं तो वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं, आप उनसे बात करके देखो, मतलब अपना धन वो सफल करना चाहते हैं अगर कोई ऐसा सेवा का कार्य हो। कईयों के पास बहुत धन होता है लेकिन वो देखते हैं कि सही व्यक्ति सही स्थान पर मेरा धन सफल हो तो वो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो फिर उनसे बातचीत हुई और पूरा रैली का खर्चा उठाने के लिए वो तैयार हो गए। तो देखिए बाबा कैसे किसी को नमित बना देगा। हम सोचते हैं हम कैसे करेंगे, हम कोई संकल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सच्ची दिल है बाबा के कार्य में तो कोई ना कोई आत्मा नमित बन जाती है। और ऐसे बहुत भाई बहनों के ये अनुभव रहते हैं सेवा में कि मन न चित हम सोचते भी नहीं हैं और बाबा कैसे करा लेता है अपना कार्य। और जैसे बात किया हमारा जो विशेष धन है वो तो ज्ञान धन है। तो बाबा कई बार कहते हैं अंत समय जब होगा, बाबा ने बहुत बार बताया अंत समय विनाश के समय पर खाने को भी नहीं मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आपको दाल रोटी भी मिले, अभी तो आराम की दाल रोटी बाबा की याद में प्यार से खाते हैं, ऐसे कहते हैं ना दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, है ना। तो भले ही हम बहुत पकवान, आजकल तो डॉक्टर भी पकवान नहीं खाने देते हैं, 36 प्रकार का भोजन जो भोग लगाते हैं देवताओं को, ऐसा भोजन तो आजकल डॉक्टर खाने नहीं देते हैं, वैसे ही कहते हैं रूखी रोटी खाओ मानो। तो बाबा की याद में हम ब्रह्मा भोजन खा दिखाते हैं, लेकिन हो सकता है अंत समय में ऐसी परिस्थितियां हों, तो बाबा ने कहा तभी भी आपके चेहरे खुशी में चमकते रहेंगे। हाँ, खाना ना मिले खाने को तो भी खुशी में चेहरे चमक सकते हैं। कौन सी खुशी? बाबा कहता है इसको ही कहते हैं मिरुआ मौत मलु का शिकार। हाँ, दुनिया में दुख होगा, अति दुख में दुनिया जाएगी, लेकिन आप बाबा के बच्चे बाबा की याद में खुश मौज में होंगे, क्योंकि आपको पता है अब कौन सी दुनिया आने वाली है, हम कहाँ जा रहे हैं। और बाबा अपने बच्चों को साक्षात्कार के द्वारा बहलाते भी रहेंगे। उस समय बाबा ने कहा ना, अंत समय में बहुत सभी आत्माओं को साक्षात्कार भी होते रहेंगे। तो ये वो शक्ति है ज्ञान धन की, लेकिन हमें उसका स्मृति स्वरूप बनना है। जितना हम स्मृति स्वरूप बनते रहेंगे उतना हम जीवन में संतुष्टता का अनुभव सहज करेंगे, क्योंकि सर्व प्राप्तियों का हमें स्मृति है, याद है वो, और उसे हम समय पर यूज करते हैं ना। ज्ञान धन है, गुणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, समय का खजाना है, ये अविनाशी खजाने हैं, ये धन है जो बाबा ने हमें दिए हुए हैं, इन्हें हमें यूज करना है अपने ब्राह्मण जीवन में। और जहां तक संबंधों में संतुष्टता की बात आती है, तो यहां भी हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, ये हमारा ईश्वरीय परिवार है, दैवी परिवार है, और हम जानते हैं कि ये सभी हमें 84 जन्मों के बाद फिर से उस स्मृति से मिले हैं। बाबा ने सबको एक परिवार के सूत्र में बांधा है, ये सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये पूज्य आत्माएं हैं। अगर ये स्मृति रहती है तो क्या होगा, सबके प्रति स्नेह रहेगा और सबसे हम बहुत मीठे रहेंगे, क्योंकि हम इतनी ऊंची नजर से अपने परिवार को देखते हैं। लेकिन कहां ना कहां बाबा कहता है जब पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, माया के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, तो फिर टकराव शुरू हो जाता है। जहां पुराने संस्कार, ईश्वरीय संस्कार आएंगे तो बाबा कहता है दूध पानी क्या वो शीरखंड होकर रहेंगे। हाँ, और अगर पुराने माया के संस्कार आएंगे तो लून पानी हो जाएंगे, तो फिर हम असंतुष्ट होते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा क्यों बोलते हैं, इसने मुझे 10 लोगों के सामने मेरी इंसल्ट कर दी, मेरे को गाली दे दी, करते नहीं करते, किसी ने मेरे ऊपर गुस्सा किया, तो बाबा कहता है कोई ऐसा करे फिर भी मैं संतुष्ट रहूं, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता। हाँ, संतुष्टता का गुण तो तभी कहेंगे, परिस्थिति ही नहीं आए और संतुष्ट है तब तो उस गुण की परख नहीं है, लेकिन कोई परिस्थिति पैदा कर रहा है फिर भी मैं संतुष्ट रहूं, वही ज्ञान की शक्ति है। यही मैंने कहा ना कि हमारी संतुष्टता राज को जानने से है, क्योंकि हमने सब राजों को समझा है इसीलिए हम नाराज नहीं होते। तो क्या राज हमने समझा यहाँ पर? वो आत्मा अगर मुझे गाली दे रही है, अगर वो मुझे गुस्सा कर रही है, तो दो बातें हैं, एक तो पूर्व जन्म में मैंने कहीं उसको गाली दिया हुआ है, जरूर मैंने उसका कहीं अपमान किया हुआ है, तो वो हिसाब पूरा हो रहा है। तो हमने पहले भी कहा कि कर्ज पूरा हुआ तो मुझे खुश होना चाहिए, तो असंतुष्ट होने की बात नहीं। और दूसरी बात, वो मेरा टेस्ट पेपर भी है, मुझे पास होना है, न सिर्फ पास होना है लेकिन पास विद ऑनर होना है। बाबा ने कहा कि अगर हम बाबा के पास हैं तो किसी भी परिस्थिति को हम सहज पास कर लेंगे। अगर बाबा मुझे याद है तो वो शक्ति, वो सहन शक्ति मेरे अंदर आ जाती है, तो सहन शक्ति बाबा की आज्ञा है, बाबा ने हमें कहा ना सहन करो। तो अगर मैंने बाबा की दुआएं मानी, बाबा की वो आज्ञा का पालन किया, तो मुझे बाबा की दुआएं मिलने वाली हैं, है ना, और आगे के लिए मुझे सदा के लिए ऐसे पेपर में पास होने की पावर मिल जाती है। तो फिर सबसे सबसे कठिन कई बार होता है इन परिस्थितियों को सहन करना। इतनी फीलिंग में आ जाते हैं, इतना मूड ऑफ हो जाता है, इतने नाराज हो जाते हैं कि उसका शक्ल भी नहीं देखना चाहते, बात करना नहीं चाहते, होता है नहीं होता है। तो पास्ट इज पास्ट, हाँ, जो हो गया वो खत्म, हिसाब किताब। बाबा कहता है मुझे रहम दिल बनना है, हाँ, जैसे बाप क्षमा का सागर है ऐसे बाबा हमारे अवगुणों को कभी चित पर रखते हैं। कैसे भी हैं हम, फिर भी बाबा से हमें प्यार मिलता है। तो ऐसे ही मुझे हर आत्मा के प्रति क्षमा का सागर बनना है, यानी उनकी गलतियों को क्षमा करने है। वो लोग गलती करते हैं, लेकिन क्योंकि हम कोई भी संपूर्ण नहीं है, हम सभी पुरुषार्थी हैं, कभी हम गलती करते हैं, कभी दूसरे गलती करते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से गलती होती ही रहती है। लेकिन मुझे संतुष्ट रहने के लिए बाबा ने कहा, यदि वो आत्मा अपनी तमो प्रधानता का पाठ बजा रही है, मानो उस समय उसके रावण के संस्कार इमर्ज हो रहे हैं, ऐसे ही होगा, माया के संस्कार माना रावण के संस्कार, तो मुझे क्या बनना है, जैसे मानो कहां आग लगी है, तो फायर ब्रिगेड वाले जो आग बुझाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अपना आग बुझाने का कर्तव्य करते हैं, वो अपना कर्तव्य भूल नहीं जाते हैं। तो हम कौन हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हम बाबा के बच्चे, रहम दिल कल्याणकारी हैं। तो उस स्थिति में मेरा फर्ज क्या है, उस आत्मा के प्रति रहम करना, उसके प्रति शुभ भावना रखना। तो हम असंतुष्ट होंगे या उसको सहयोग देंगे, उनके उन संस्कारों को परिवर्तन करने में। अगर मैंने उसको क्षमा किया, सहन किया, तो आगे के लिए उसके परिवर्तन में हम सहयोगी बन जाएंगे और हमारी मार्क्स जमा होंगी, क्योंकि हमने बाबा की आज्ञा का पालन किया, हमने सहन किया। इसलिए बाबा कहता है सहन करना माना मरना नहीं। कई बार लोग कहते हैं कितना सहन करेंगे, हमको ही मरना है क्या, हमको ही झुकना है क्या। तो बाबा कहता है झुकना माना उड़ना, भगवान की डेफिनेशन ही अलग है, और सहन करना माना सहन शाह बनना, सहन करना माना भाग्यवान बनना। तो जब हम बाबा के इन महावाक्यों को याद रखते हैं, उन प्राप्तियों को स्मृति में रखते हैं, तो हमारे लिए संबंधों में भी कोई भी पेपर आ जाए उसमें संतुष्ट रहना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर जहां तक नाम की बात आती है, सूक्ष्म प्राप्तियों में जो असंतुष्टता होती है, तो कई बार हम देखते हैं हम तो बहुत योग्य हैं, अगर योग्य नहीं है तो हम ज्यादा नहीं सोचते हैं, लेकिन अगर हमें लगता है कि हम तो बहुत योग्य हैं, हमारे अंदर इतनी क्वालिटीज हैं, लेकिन फिर भी बहन कभी भी हमें पूछती भी नहीं है, कभी सेवा में मेरा नाम लिया ही नहीं जाता है, मानो हो सकता है मेरा किसी आत्मा के साथ हिसाब किताब है। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन होता है कोई कोई आत्मा के साथ हमारा कोई ऐसा हिसाब किताब होता है, और वही नेमत होती है। और जब ऐसा कोई अवसर होता है तो वो आपका हिसाब किताब सामने आ जाता है। तो बाबा कहता है अगर मानो ऐसा हो रहा है कि आपका नाम होना चाहिए, आप योग्य हैं, लेकिन नहीं हो रहा है और आप संतुष्ट हैं, तो बाबा के दिल में आपका नाम सदा है, विजय माला में आपका नाम पहले होगा, उस आत्मा से पहले आपका नाम होगा, ठीक है। तो अगर इस राज को हम जानते हैं तो भी कोई हमारे साथ ऐसा करेगा तो हम नाराज नहीं होंगे। फिर बाबा के तहत देखो मैं आपका नाम लेता हूं, बाबा ने सबसे बड़ा हम बच्चों को ब्राह्मण नाम दिया है, और आज तक भी इस ब्राह्मण नाम से दुनिया में भी जो जन्म से ब्राह्मण हैं वो आज तक कमा रहे हैं, कितना मान मिलता है उनको क्योंकि वो ब्राह्मण हैं। तो बाबा कहता है आप तो सच्चे ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मणों का नाम ही कितना ऊंचा है। और फिर कौन हमारा नाम लेता है, वो जैसे एक कहानी बताते हैं ना कि एक बार नारद जी विष्णु जी के पास पहुंचे, तो विष्णु जी एक डायरी पढ़ रहे थे, तो नारद जी तो ना उनका स्वभाव के अनुसार ही जिज्ञासा हुई उनको, तो उन्होंने पूछा भगवान आप क्या पढ़ रहे हैं आज, तो बोला कि मैं अपने भक्तों के नाम पढ़ रहा हूँ जो मुझे बहुत याद करते हैं, मेरे अनन्य भक्त हैं। तो नारद जी तो भक्त थे, तो उनको जिज्ञासा हुई अच्छा मेरा नाम कहाँ है भगवान की लिस्ट में, तो पूछा, तो उन्होंने अपनी डायरी नारद जी के आगे कर दी, तो देखा कि नारद जी का नाम जो था वो सबसे ऊपर, बहुत खुश, देखो मेरा नाम सबसे ऊपर है। फिर देखा हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी भी बड़े भक्त माने जाते हैं, वो भी हमेशा दिखाते ना अपना सीना खोल के कि राम उनके दिल में बसे हुए हैं, तो उन्होंने देखा लेकिन हनुमान जी का नाम तो सबसे नीचे है, अब वो रह भी नहीं सकते है ना, वो हमेशा इधर की बात उधर करते हैं। तुरंत पहुंच गए हनुमान जी के पास कि देखो मेरा नाम सबसे ऊपर था, आपका नाम सबसे नीचे। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। फिर दूसरे दिन जब वो विष्णु जी के पास पहुंचे तो देखा आज भी वो एक डायरी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो छोटी सी डायरी है। फिर पूछा भगवान आज भी आप डायरी पढ़ रहे हैं, आज क्या पढ़ रहे हैं, तो विष्णु जी ने कहा कि आज मैं वो डायरी पढ़ रहा हूँ जिनको मैं याद करता हूँ, कल मैं वो पढ़ रहा था जो मुझे सबसे ज्यादा याद करते हैं, पर आज मैं जिन्हें सबसे ज्यादा याद करता हूँ। तो अभी फिर उनको लगा मेरा नाम कहाँ है इसमें, तो उन्होंने विष्णु जी ने उनको डायरी दे दी, तो देखा कि उसमें हनुमान जी का नाम सबसे ऊपर और नारद जी का नाम सबसे नीचे। तो हम कौन हैं? सारे भक्त भगवान को याद करते हैं, और हमें कौन याद करता है? हाँ, स्वयं शिव बाबा हमें याद करते हैं। तो फिर हमेशा देखो आजकल बाबा की मुरलियां चलती हैं, बाबा क्या कहता है, बाबा के दिल में बच्चे समाये हुए हैं और बच्चों के दिल में बाबा समाया हुआ है। कितनी बार बाबा हमें ये स्मृति दिलाते हैं, बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते, बाबा बच्चों को याद करते हैं, बाबा के दिल में बच्चे समाये हुए हैं। तो हम उस नाम को याद करें जो भगवान ने हमें दिया है। फिर मान की बात अगर हम सोचते हैं तो स्वयं भगवान ने हमें इतना स्वमान दिया, कितने ऊंचे हमें बाबा ने टाइटल दिए हैं। दुनिया में किसी को दो टाइटल चार टाइटल मिल जाते हैं तो क्या क्या समझने लगते हैं अपने आप को, होता ही नहीं होता है। लेकिन यहाँ टाइटल इतने हैं कि हम याद भी नहीं कर सकते कि बाबा ने इतने टाइटल हमें दिए। अभी मैं आपसे पूछूं कौन कौन से टाइटल दिए हैं बाबा ने, क्या क्या हैं हम बाबा के, बाबा की मस्तक मणि है, बाबा के नैनों के नूर हैं, कोठों में कोई कोई में भी कोई भगवान के चुने हुए रतन हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, देवात्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, जो भी। तो बाबा कहता है अगर आप स्वमान में हैं तो अपने आप मान मिलने वाला है। मान की विधि यही है कि स्वमान में रहो और दूसरा दूसरे को मान दो। जैसे बाबा हम बच्चों को कितना मान देते हैं, बाबा हम बच्चों को कितनी ऊंची नजर से देखते हैं, तो हम भी बाबा को बहुत प्यार करते हैं, बाबा को हम मान देते हैं। तो ऐसे ही अगर सम्मान चाहिए तो सम्मान दो और स्वमान में रहो, ये विधि है। इस विधि से कभी भी हम ये नहीं सोचेंगे ये तो हमें पूछते ही नहीं है, ये तो हमें प्यार देते ही नहीं है। कई बार हम दुनिया की आत्माओं से असंतुष्ट हो जाते हैं, ब्राह्मण परिवार में तो हमें मिलता है, लेकिन हमारे रिश्ते नाते संबंधी है ना, वो हमारे लिए कुछ ऐसा, क्योंकि हम बाबा के ज्ञान में चलते हैं तो उनसे तो अलग हो जाते हैं, थोड़ा हमारी दिनचर्या अलग चलती है कई बार, बिल्कुल वो हमारी उपेक्षा करते हैं, हमारे लिए विघ्न रूप बनते हैं। हम उनसे प्यार की अपेक्षा करते हैं, हमें प्यार नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास है ही नहीं, देना किसको है, वो मुझे दे या मैं उनको दूं, क्या कहेंगे? हमें उन्हें प्यार देना है। जैसे हम कहते हैं ना, कोई बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, उसके अंदर पावर ही नहीं है तो क्या काम करेगी वो, उनके अंदर प्रेम की शक्ति है ही नहीं, उनके अंदर शांति की शक्ति है ही नहीं, उनके अंदर सुख है ही नहीं, तो वो आपको क्या देंगे? अब बाबा ने हमें भरपूर किया है, हम मास्टर शांति के सागर हैं, हम मास्टर प्रेम के सागर हैं, तो मुझे देना है, देते जाना है। एक बार बाबा ने कहा था कि प्रेम के लोटे नहीं बन जाना, लोटा में थोड़ा सा पानी होता है ना, जल्दी खत्म हो जाता है, तो हमारा प्रेम भी ऐसा ना हो। हाँ, इसने एक बार मुझे कहा ना, तो मैंने इसको कुछ नहीं कहा, फिर भी मैंने प्रेम से बात की, पर अब 10 बार ये ऐसा करेंगे तो कब तक, तो क्या हो गए हम? प्रेम के सागर तो नहीं हुए। तो वो हमारा लक्ष्य है कि बाबा ने जो हमें दिया है वो सब आत्माओं को मुझे देना है, और हम देंगे तो अपने आप वो मेरे पास आने वाला है। फिर शान की बात, तो बाबा कहते हैं बाप का दिल तख्त नशीन होना ये सबसे बड़ा शान है। हम बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे हैं तो प्राप्ति हो गई, सूक्ष्म प्राप्तियां भी हमें हैं, इनसे हमें संतुष्ट रहना है। दुनिया में हद का नाम मान शान मिले या ना मिले उसकी हमें परवाह नहीं करनी है, लेकिन बेहद की प्राप्ति में हमें रहना है, उसके स्मृति स्वरूप बनना है। तो फिर संतुष्ट रहने के लिए क्या करना है, क्या करना है? अपनी प्राप्तियों को स्मृति में रखना है। जो बाबा से हमें सर्व खजाने मिले हैं, उन खजानों को, ज्ञान को समय पर स्मृति में लाना है, तो फिर हम किसी पर भी दोष नहीं रखेंगे, ना बाबा पर दोष रखेंगे, ना ड्रामा पर दोष रखेंगे, या फिर हम व्यक्ति पर भी दोष नहीं रखेंगे कि ये व्यक्ति का स्वभाव संस्कार ऐसा है। स्वयं पर भी कई बार हम असंतुष्ट हो जाते हैं, स्वयं पर असंतुष्ट होते हैं अपने पुरुषार्थ के लिए, कि अरे मैं इतना करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं सकती हूँ, या जो भी मेरी कमजोरी का संस्कार दूर करने की मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ लेकिन मेरा संस्कार तो बदलता ही नहीं है, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं बदल पाऊंगी, तो क्या हो गए? अपने आप से असंतुष्ट हो गए। तो अब स्वयं पर भी दिल शिकस्त नहीं होना है। बाबा ने कहा हमेशा सोचो, मैं सर्वशक्तिवान बाप की बच्ची, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जब वो मेरे साथ है तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सदा समझो, कल्प पहले मैं विजयी बनी थी, आज भी हूँ और सदा मुझे बनना है, हर कल्प कल्प की मैं विजयी आत्मा हूँ। ऐसी बातें अपनी को स्मृति में दिलाओ, दिल शिकस्त की बातें नहीं, ये सोचना मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, दिल शिकस्त होना है। तो स्वयं से भी असंतुष्ट नहीं, और मानो कोई गलती हो गई मेरे से, हो जाती है कभी, तो फिर ज्यादा पश्चाताप भी नहीं करना है। बाबा कहते हैं उसको वहीं फुल स्टॉप लगा दो, आगे के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे, अटेंशन देंगे, अपने आप को भी क्षमा करना है। दूसरों को क्षमा करते हैं हम, लेकिन कई बार हम खुद गलती करते हैं, कई बार बाबा के श्रीमत के विरुद्ध हम कई गलतियां कर जाते हैं, तो फिर मुझे अपने आप को भी क्षमा कर देना है। उसका भी बहुत व्यर्थ चिंतन नहीं चलाना है कि ये हो गया वो हो गया, ऐसा बोल दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। तो स्वयं से भी संतुष्ट, बाबा से भी संतुष्ट, बाबा ने ड्रामा में मुझे जो पार्ट दिया है बहुत एक्यूरेट है। फिर प्रकृति से भी संतुष्ट, कई बार प्रकृति के वायुमंडल से हम असंतुष्ट हो जाते हैं, बाबा कहते हैं उस प्रकृति के वायुमंडल को भी हम पावन बनाने वाली आत्माएं हैं, हमारी वृत्ति से वाइब्रेशन बनते हैं, उससे वायुमंडल बनता है, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे उसे पावन बनाना है। कहीं प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, मेरा फर्ज है मुझे सहयोग देना है, उसको लेकर के भी मुझे असंतुष्ट नहीं होना है। तो हम ये स्मृति में रखेंगे तो सदा संतुष्ट रहेंगे, और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। जो प्रसन्न आत्मा होगी, बाबा ने कहा उसके चेहरे की झलक फलक ही अलग होगी। जो दुनिया में भी प्राप्ति संपन्न आत्माएं होती है ना, उनकी झलक फलक कैसी होती है, तो बाबा कहता है वो झलक फलक आपके द्वारा दिखाई देगी, तो आपका चलन और चेहरा ही सेवा करेगा। बोलकर आजकल वाणी के द्वारा इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे चेहरे और चलन के द्वारा, स्वरूप के द्वारा वो सेवा हो कि सदा ही प्रसन्न चित आत्माएं हैं, सदा ही संतुष्ट आत्माएं हैं। इन्हें ऐसा बनाने वाला कौन? और जो संतुष्ट आत्मा है वो प्रभु प्रिय होती है, लोकप्रिय होती है, उसे सर्व सिद्धियां सहज प्राप्त होती हैं, उसे सर्व की दुआएं सहज मिलती हैं, क्योंकि सरल स्वभाव है। आप किसी से नाराज ही नहीं होते, तो नाराज करते भी नहीं है। मैं भी संतुष्ट और मेरे से दूसरे भी संतुष्ट, तो सबकी दुआएं मिलेंगी नहीं मिलेंगी? और जब हमें दुआएं मिलती हैं तो हम उड़ती कला का अनुभव बहुत सहज करते हैं, योग में शक्तिशाली स्थिति का अनुभव हम करते हैं। ठीक है, ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। जैसे बाबा चाहते हैं कि हमें डबल डॉक्टर बनना है, जिस्मानी और रूहानी, ऐसे डबल डॉक्टर बन अपने प्रैक्टिकल जीवन के कुछ अनुभवों द्वारा, कि स्वमान में रहकर, अपने शान में रहकर हम अपने जिस्मानी और आत्मिक रोगों का भी दहन कैसे करें, कैसे उनके ऊपर हम काबू पाए और अपनी स्थिति को बरकरार बनाए रखें, ऐसे कुछ बातों से दीदी जी ने हमें बहुत ही सुंदर तरीके से रूबरू कराया। तो हम फिर से बहुत ही तहे दिल से, खुशी से दीदी का फिर से करतल ध्वनि से हम धन्यवाद करेंगे।